तो आज हम पूज्य गुरुदेव के हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पर बात करेंगे, और उसमें भी खास तौर पर एक बहुत ही सरल सा लेकिन बहुत गहरा विचार है।
हाँ, उनका 11वां संकल्प, दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं।
बिल्कुल, बात सुनने में तो बहुत सीधी लगती है, लेकिन सवाल यही है कि इसे निभाना इतना मुश्किल क्यों है?
यही तो मतलब सबसे बड़ा विरोधाभास है। पूज्य गुरुदेव ने इसी को लेने और देने के दो बाट कहा है।
लेने और देने के दो बाट?
हाँ, मतलब जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमारा पैमाना कुछ और होता है, और जब हमें कुछ देना होता है तो वो पैमाना ही बदल जाता है।
अच्छा, इसे जरा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। सत्संकल्प में कुछ बड़े अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वो रेलगाड़ी वाला।
हाँ, वो तो बहुत ही सटीक है कि जब हम डिब्बे में चढ़ते हैं और हमें जगह नहीं मिलती तो हमें बैठे हुए लोग कितने स्वार्थी लगते हैं ना।
बिल्कुल, लगता है कि थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकते। लेकिन
जैसे ही हमें सीट मिल जाती है, हमारा नजरिया ही बदल जाता है। फिर हम भी पैर फैलाकर बैठते हैं, और कोई नया यात्री आए तो उसकी तरफ देखते भी नहीं।
ये तो मैंने खुद भी महसूस किया है, और यही बात शायद व्यापार जैसी चीजों पर भी लागू होती है।
बिल्कुल होती है। कोई हमें मिलावटी सामान दे दे तो कितना गुस्सा आता है, पर जब खुद मुनाफा कमाने का मौका मिलता है तो कई बार लोग उसे अपनी चतुराई समझ लेते हैं।
ये तो हुई लेन देन की बात, क्या ये सिद्धांत हमारे रिश्तों पर भी इतना ही गहरा असर डालता है?
रिश्तों पर तो शायद और भी ज्यादा। सत्संकल्प में विवाह का एक उदाहरण है।
हाँ, दहेज वाला।
जी, हर कोई अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढता है जहां दहेज न मांगा जाए, और दहेज मांगने वालों की समाज में निंदा भी करते हैं।
लेकिन जब अपने बेटे की बारी आती है
तो उम्मीदें बदल जाती हैं, अपेक्षाएं बदल जाती हैं। यही तो वो दुमुही नीति है जो हमारे सामाजिक ताने बाने को एक तरह से कमजोर करती है।
और ये सिर्फ इतने बड़े फैसलों की बात नहीं है, शायद हमारी रोज की बातचीत में भी।
निश्चित रूप से, हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार से, विनम्रता से बात करें। किसी की कड़वी बात हमें चुभ जाती है।
हाँ, कई कई दिनों तक याद रहती है।
बिल्कुल। तो अगर हम बस ये याद रखें कि हमारी बात दूसरों को कैसी लगेगी, तो हमारी अपनी जबान से कभी कड़वाहट निकलेगी ही नहीं।
और यही बात शायद परिवार में बड़ों के साथ व्यवहार पर भी लागू होती है।
हाँ, अगर हम आज अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं, तो फिर हम किस मुंह से उम्मीद करें कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे? ये तो कर्म का सीधा सा हिसाब है।
यहाँ पर एक व्यवहारिक सवाल उठता है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग सज्जनता का फायदा भी उठाते हैं। तो अगर हम हमेशा उदार बने रहें और लोग हमें धोखा देते रहें, तो क्या ये हमारी कमजोरी नहीं कहलाएगी?
सावधान रहना जरूरी है।
मतलब मूर्ख बनकर ठगे जाना सज्जनता नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनकी वजह से हम अपना मूल स्वभाव, अपना सौजन्य छोड़ दें, ये भी सही नहीं है।
तो फिर संतुलन कैसे बने?
इसके लिए प्रकृति से प्रेरणा लेने को कहा गया है। जैसे बादल है, वो ये देखकर नहीं बरसते कि जमीन उपजाऊ है या बंजर।
वो तो सब पर बरसते हैं।
हाँ, सूर्य सबको एक जैसा प्रकाश देता है, पृथ्वी सबका भार उठाती है, हमें भी वैसा ही बनना है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भी हमारा मूल स्वभाव उदारता का होना चाहिए।
पर अंत में फायदे में कौन रहता है, वो जो चालाक है या वो जो उदार है? क्योंकि देखने में तो लगता है कि उदार व्यक्ति को धोखा खाना पड़ता है।
देखने में ऐसा लग सकता है, पर सत्संकल्प का निष्कर्ष एकदम साफ है। हो सकता है एक उदार व्यक्ति को कोई एक दो बार ठग ले, धीरे अकेला पड़ जाता है, जरूरत के समय कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता।
मतलब लंबे समय में देखा जाए तो ईमानदार और उदार व्यक्ति ही असल में फायदे में रहता है।
बिल्कुल, एक बेईमान दुकानदार कभी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता।
तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अपने और दूसरों के लिए एक ही पैमाना रखना, ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है, बल्कि एक सफल और शांत जीवन जीने का व्यवहारिक तरीका भी है।
बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटी सी कहानी है सोचने के लिए।
जरूर।
एक दुकानदार को दिन भर की कमाई में कुछ खोटे सिक्के मिले, तो उसके पड़ोसी ने कहा, अरे जैसे तुम्हें किसी ने दिए, तुम भी किसी और को चला दो, हिसाब बराबर।
जो कि ज्यादातर लोग शायद सोचते हैं।
पर उस दुकानदार ने क्या किया? यही है कि हम बुराई को आगे बढ़ाने वाले बनते हैं, या उस चक्कर को खुद पर रोक लेने की हिम्मत रखते हैं।